ये आकाशवाणी दिल्ली है। दिल्ली के मुनक नहर के तटबंध में आई दरार को भरा गया। दिल्ली नगर निगम ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए पूरे शहर में अभियान तेज किया। दो दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शुरू। फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई वाहन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने दो अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं सरफिरोजी। राष्ट्रीय राजधानी में मुनक नहर के तटबंध में आई दरार को भर दिया गया है। दिल्ली सरकार ने यह जानकारी दी। मुनक नहर की एक शाखा के तटबंध में दरार आ गई थी, जिसके कारण बवाना के कई इलाकों में घुटनों तक पानी भर गया था और राजधानी के विभिन्न इलाकों में पानी की आपूर्ति भी प्रभावित हुई थी। दिल्ली की जल मंत्री आतिशी ने बताया कि राजधानी के लोगों को आज से पानी मिलने लगेगा। उन्होंने बताया कि सुबह 10:30 बजे हरियाणा ने ककरोई हेड से पानी छोड़ दिया है और आज रात से द्वारका में पानी की सप्लाई फिर से शुरू हो जाएगी। दिल्ली में बारिश के कारण डेंगू, चिकनगुनिया और अन्य मच्छर जनित बीमारियों को नियंत्रित करने के लिए नगर निगम द्वारा कई उपाय किए जा रहे हैं। दिल्ली नगर निगम ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम और नियंत्रण के लिए पूरे शहर में अभियान तेज कर दिया है। इस वर्ष 2,18,000 से अधिक घरों में कीटनाशक का छिड़काव किया गया है। वहीं नालियों, जल निकायों, पार्कों, अस्पतालों, स्कूलों और सरकारी कार्यालयों जैसे संस्थानों में मच्छर जनित बीमारियों से रोकथाम के लिए विशेष अभियान चलाए गए हैं। एक रिपोर्ट।
दिल्ली नगर निगम ने अब तक 39,862 कानूनी नोटिस जारी किए हैं और 9,479 चालान किए हैं। वहीं दिल्ली नगर निगम ने करीब 2,500 से अधिक उल्लंघनकर्ताओं पर 6,00,000 से अधिक रुपए का जुर्माना लगाया है। नगर निगम का सार्वजनिक स्वास्थ्य विभाग नियमित रूप से सभी क्षेत्रों में लार्वा विरोधी उपाय कर रहा है। इसके साथ ही दिल्ली नगर निगम ने नागरिकों से अपील की है कि वे अपने घर और आसपास पानी का जमाव न होने दें, ताकि मच्छर न पनप सके। प्रादेशिक समाचार के लिए अभिषेक कपिल।
दिल्ली प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष देवेंद्र यादव ने राजधानी के चांदनी चौक विधानसभा क्षेत्र के खैबर पास की झुग्गियों को तोड़े जाने के बारे में दिल्ली सरकार पर अमानवीय कार्रवाई का आरोप लगाया है। श्री यादव ने आज पीड़ित निवासियों के प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात की और झुग्गियों में रहने वाले लोगों को कांग्रेस पार्टी द्वारा हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया। मुलाकात के बाद श्री यादव ने कहा कि दिल्ली सरकार डीडीए, दिल्ली नगर निगम सहित कोई भी सरकारी एजेंसी को राजधानी में बिना वैकल्पिक व्यवस्था किए झुग्गियों को तोड़ने का अधिकार नहीं है। उन्होंने कहा कि इस पर न्यायालय का भी स्पष्ट निर्देश है कि किसी भी गरीब आदमी के घर को उजाड़ने से पहले अस्थायी व्यवस्था करनी होगी। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना के नेतृत्व में राजधानी में एक पेड़ मां के नाम अभियान के तहत वृक्षारोपण कार्यक्रम किया जा रहा है। इस दौरान दिल्ली विकास प्राधिकरण की ओर से आज राजधानी के द्वारका सेक्टर 19, पश्चिम विहार, जहांपना सिटी फॉरेस्ट, कालिंदी अविरल विस्तार, नरेला और शालीमार बाग सहित विभिन्न क्षेत्रों में वृक्षारोपण किया गया। इस अभियान के तहत मौसम और पर्यावरण की स्थिति को अनुकूल बनाए रखने के उद्देश्य से पौधे लगाकर लोगों को जागरूक किया जा रहा है। इस वृक्षारोपण कार्यक्रम में आसपास के लोगों सहित स्कूल के बच्चों ने भी बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। सूचना और प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने आज घोषणा की कि भारत गोवा में 20 से 24 नवंबर तक विश्व दृश्य श्रव्य और मनोरंजन वेव्स शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा। ये सम्मेलन विश्वभर के मीडिया और मनोरंजन उद्योग के लिए एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम होगा। नई दिल्ली में इस सम्मेलन के कर्टन रेजर कार्यक्रम में गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत के साथ श्री वैष्णव ने कहा कि मीडिया और मनोरंजन जगत एक संरचनात्मक परिवर्तन से गुजर रहा है। इस क्षेत्र ने बहुत से प्रौद्योगिकी समावेशन देखे हैं। उन्होंने कहा कि सरकार इस परिवर्तन से तालमेल बिठाने के लिए मीडिया और मनोरंजन के पूरे पारिस्थितिकी तंत्र को समर्थन देने के प्रति वचनबद्ध है। इन लक्ष्यों को हासिल करने के प्रयासों और संभावनाओं को लेकर श्री वैष्णव ने कहा कि सरकार मीडिया और मनोरंजन क्षेत्र में रोजगार बढ़ाने और प्रतिभा में वृद्धि करने पर ध्यान केंद्रित कर रही है। उन्होंने कहा कि ये प्रयास एक पारिस्थितिकी तंत्र को सृजित करेंगे। इससे देश में उच्च गुणवत्ता की सामग्री सृजित करने और बौद्धिक संपदा के अधिकारों को संरक्षित करने में प्रोत्साहन मिलेगा। ये पारिस्थितिकी तंत्र भारत को अपने कंटेंट सृजन केंद्र को स्थापित करने के एक प्राकृतिक विकल्प के रूप में विश्व में मान्यता देगा। सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉ एल मुरुगन ने कहा कि वेव्स 2024 इस उद्योग से जुड़े वैश्विक हितधारकों को भारत लाने के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दृष्टिकोण को साकार करेगा। ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIRNewsHindi को फॉलो कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। केंद्रीय सहकारिता राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने आज फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई वाहन मोबाइल प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। उन्होंने एक रोड शो को भी हरी झंडी दिखाई। ये प्रदर्शनी जिला प्रशासन के तत्वाधान में हरियाणा के नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा विभाग HREDA और अर्गो ईवी स्मार्ट धीमान के विशेष सहयोग से आयोजित की गई। रोड शो में ई कार, ई स्कूटर और ई बस जैसे कई तरह के इलेक्ट्रिक वाहनों का प्रदर्शन किया गया। श्री गुर्जर ने इस अवसर पर कहा कि सुरक्षित भविष्य के लिए ई वाहन आवश्यक हैं। लोगों को इलेक्ट्रिक वाहन अपनाने के लिए प्रोत्साहित करते हुए श्री गुर्जर ने कहा कि ग्लोबल वार्मिंग के संकट से बचने के लिए दुनिया भर में कई तरहों की पहलों की शुरूआत की गई है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार भी इस दिशा में तेजी से आगे बढ़ रही है। उन्होंने कहा कि नई तकनीक से भविष्य में बैटरी की कीमतें कम हो जाएंगी, जिससे इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतों में भी कमी आएगी। श्री गुर्जर ने कहा कि देश में आने वाली पीढ़ी को सुरक्षित भविष्य देने के लिए कई कदम उठाए गए हैं, विशेषकर हरित हाइड्रोजन और इलेक्ट्रिक वाहनों की दिशा में तेजी से कदम उठाए जा रहे हैं। एक रिपोर्ट।
केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर ने कहा कि आर्थिक मजबूती के लिए हमें इलेक्ट्रिक वाहनों के प्रयोग की ओर तेजी से बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि आज पूरी दुनिया के समक्ष ग्लोबल वार्मिंग का संकट छाया हुआ है, जिससे निपटने के लिए एकजुट प्रयासों की आवश्यकता है। श्री गुर्जर ने कहा कि सरकार ने विभिन्न योजनाएं चलाकर इलेक्ट्रिक दोपहिया, तिपहिया और चारपहिया वाहनों को बढ़ावा दिया है। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में बैटरी की कीमत कम होगी तो इलेक्ट्रिक वाहनों की कीमतें भी और कम हो जाएगी। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि ग्रीन फरीदाबाद, क्लीन फरीदाबाद के साथ साथ भारत को हरा भरा और स्वच्छ बनाने के लिए इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देना होगा। प्रादेशिक समाचार के लिए समाचार कक्ष से जया भारती।
आम आदमी पार्टी के नेता और राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने पंजाब उपचुनाव में जीत पर जनता का आभार व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि पंजाब के जालंधर पश्चिम विधानसभा सीट पर रिकॉर्ड जीत जनता के अटूट विश्वास का नतीजा है। संजय सिंह ने कहा कि ये जीत आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के लिए बड़े उत्साह की बात है। दिल्ली पुलिस ने कीर्ति चक्र से अलंकृत शहीद कैप्टन अंशुमान सिंह की पत्नी पर कथित अभद्र और अपमानजनक टिप्पणी के मामले में राष्ट्रीय महिला आयोग की शिकायत पर प्राथमिकी दर्ज की है। उनके खिलाफ सोशल मीडिया पर की गई टिप्पणियों पर महिला आयोग ने स्वतः संज्ञान लिया है। दिल्ली पुलिस विशेष इकाई द्वारा मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। करगिल विजय दिवस की 25वीं वर्षगांठ इस महीने की 26 तारीख को मनाई जाएगी। इससे पहले कल दिल्ली के राजीव चौक पर एक प्रदर्शनी राष्ट्रीय पुस्तक न्यास और दिल्ली मेट्रो रेल निगम द्वारा आयोजित की गई। तीन भागों में विभाजित इस प्रदर्शनी में भारतीय सेना से प्राप्त गोपनीय तस्वीरें, परमवीर चक्र, महावीर चक्र और अन्य वीरता पुरस्कार प्राप्त करने वाले भारतीय सैनिकों की तस्वीरें प्रदर्शित की गईं। इसके साथ ही करगिल से अपने परिवारजनों को भेजे गए सैनिकों के अंतिम पत्रों की प्रतियां भी दिखाई गईं। इस फोटो प्रदर्शनी का उद्देश्य वर्ष 1999 में हुए करगिल युद्ध के दौरान भारतीय सशस्त्र सेना के पराक्रम को प्रदर्शित करना और उन वीर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करना है जिन्होंने देश की रक्षा के लिए अपनी जान कुर्बान कर दी। प्रदर्शनी के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय पुस्तक न्यास के अध्यक्ष मिलिंद सुधाकर मराठे ने कहा कि करगिल युद्ध के दौरान जो बच्चे थे आज वो युवा हो गए हैं और उन्हें करगिल युद्ध के बारे में पूरी जानकारी हो, इसके लिए इस फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। ये प्रदर्शनी 26 जुलाई तक चलेगी। सुबह 11 बजे से 7 बजे तक राजीव चौक मेट्रो के गेट नंबर 2 और 3 से प्रवेश कर इस प्रदर्शनी को देखा जा सकता है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी दिल्ली से सुन रहे हैं। ताजा समाचार जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग इन कर सकते हैं। ये आकाशवाणी दिल्ली है। दो दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में चल रही है। प्रसार भारती और आईआईटी दिल्ली इस कार्यक्रम की मेजबानी कर रहे हैं और 45 से अधिक कॉलेजों, संस्थानों और विश्वविद्यालयों के 750 से अधिक छात्र इस कार्यक्रम में भाग ले रहे हैं। एक रिपोर्ट।
प्रतियोगिता के दौरान रोबोट तय समय के भीतर जटिल कार्यों को निष्पादित करने के लिए एक दूसरे का सामना करेंगे। डीडी रोबोकॉन की विजेता टीम अंतर्राष्ट्रीय एशिया पैसिफिक ब्रॉडकास्टिंग यूनियन रोबोकॉन 2024 में भारत का प्रतिनिधित्व करेगी, जो वियतनाम के क्वांगनिन में होगा। डीडी रोबोकॉन इंडिया का उद्देश्य रोबोटिक्स के क्षेत्र में मान्यता प्रदान करके इंजीनियरिंग छात्रों के बीच तकनीकी कौशल विकास, नवाचार और टीम वर्क को बढ़ावा देना है। ये प्रतियोगिता छात्रों की इंजीनियरिंग और रोबोटिक्स क्षमताओं को प्रदर्शित करने और आगे बढ़ाने के लिए एक सम्मानित मंच है। प्रादेशिक समाचार के लिए विशाल शर्मा।
दिल्ली विश्वविद्यालय अकादमिक परिषद की 1018वीं बैठक का आयोजन किया गया, जिसमें परिषद के सदस्यों ने अलग अलग मुद्दों पर चर्चा की। प्रोफेसर योगेश सिंह की अध्यक्षता में बैठक आयोजित की गई। बैठक में कुलपति ने अलग अलग विषयों पर तैयार की गई रिपोर्ट को प्रस्तुत किया और सभी लोगों ने अपने सुझाव दिए। इस दौरान प्रोफेसर योगेश सिंह ने बताया कि डीयू में पहली बार अंडर ग्रेजुएट लेवल पर रूसी प्रोग्राम शामिल किया गया है। इस प्रोग्राम को शैक्षणिक सत्र 2024-2025 से लागू किया जाएगा। इसके अलावा कुलपति ने बताया कि डीयू के छात्र अब एक साथ दो डिग्रियां हासिल कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि अकादमिक परिषद ने यह फैसला लिया है कि अब छात्र एक डिग्री यूनिवर्सिटी के कॉलेजों में नियमित यानी रेगुलर मोड में और दूसरी डिग्री डीयू के स्कूल ऑफ ओपन लर्निंग में ओपन और डिस्टेंस लर्निंग मोड में ले सकते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कहा है कि यदि कानून के सिद्धांतों को आम जनता को सरल शब्दों में नहीं समझाया जा सकता है तो कानूनी पेशे और कानूनी शिक्षा में कमी है। लखनऊ में डॉ राम मनोहर लोहिया राष्ट्रीय विधि विश्वविद्यालय के दीक्षांत समारोह में अपने संबोधन के दौरान मुख्य न्यायाधीश ने क्षेत्रीय भाषाओं में कानून की शिक्षा देने की आवश्यकता पर जोर दिया। इस अवसर पर प्रधान न्यायाधीश चंद्रचूड़ और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने छात्रों को डिग्रियां बांटी। श्री चंद्रचूड़ ने कहा कि कानून पढ़ते समय हमें क्षेत्रीय भाषाओं पर भी विचार करना चाहिए। दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने दो अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया है। दिल्ली पुलिस ने बताया कि इन दो तस्करों से करीब 30 कार्टन अवैध शराब बरामद की गई है। द्वारका जिले के पुलिस उपायुक्त अंकित सिंह ने बताया कि दोनों आरोपियों को द्वारका इलाके से गिरफ्तार किया गया। श्री सिंह ने बताया कि पुलिस द्वारा शराब की अवैध सप्लाई के लिए इस्तेमाल किए जाने वाली एक कार को भी जब्त किया गया है। हरियाणा पुलिस की विशेष कार्य बल एसटीएफ ने कुख्यात अपराधी राकेश उर्फ काला खैरमपुरिया को गिरफ्तार किया है। पुलिस के एक प्रवक्ता ने कहा कि काला खैरमपुरिया 2020 में पैरोल पर रिहा होने के बाद फरार हो गया था और अभी भी पुलिस की गिरफ्तारी से बच रहा था। राजधानी में आज मौसम सुहावना रहा और लोगों को गर्मी से राहत मिली। कुछ क्षेत्रों में बादल छाए रहने के साथ ही कुछ इलाकों में बूंदाबांदी भी हुई। आज का अधिकतम तापमान 35.6 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया, वहीं न्यूनतम तापमान सामान्य से 2 डिग्री कम रहते हुए 25.0 दर्ज किया गया। मौसम विभाग के अनुसार अगले 24 घंटों के दौरान राजधानी और आसपास के क्षेत्रों में आमतौर पर बादल छाए रहने और कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं कल का अधिकतम तापमान 35 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 26 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने का अनुमान है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। दिल्ली के मुनख नहर के तटबंध में आई दरार को भरा गया। दिल्ली नगर निगम ने मच्छर जनित बीमारियों की रोकथाम के लिए पूरे शहर में अभियान तेज किया। दो दिवसीय रोबोट प्रतियोगिता डीडी रोबोकॉन इंडिया 2024 नई दिल्ली के त्यागराज स्टेडियम में शुरू। फरीदाबाद में इलेक्ट्रिक वाहनों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ई वाहन जागरूकता रैली का आयोजन किया गया। और दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने दो अंतर्राज्यीय अवैध शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।